समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। इरफान सिद्दीकी साहब का एक मशहूर शेर है, अब आ गई है सहर अपना घर संभालने को, चलो कि जागा हुआ रात भर का मैं भी हूँ। आकाशवाणी स्टूडियो से आज की हसीन सुबह का आगाज करते हैं। मेरे साथ हैं आज शगुन चोपड़ा और आज के इस अंक में हम देश और दुनिया की खबरों के अलावा कुछ जानी मानी शख्सियतों को भी याद करेंगे, जिसमें सबसे पहले होंगे चार्ली चैपलिन।
वेल राइट, नमस्कार फरहत एंड टू आवर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज आवर प्रोग्राम आज सवेरे एंड यस, as Farhat said, we'll be first giving you the national, international news and Metro City updates, and there is a lot of historical information which we will be exploring. So this is our way of telling you listeners that you have to stay till the very end of the program, because we are delving into the freshness of the morning with our program, and we begin now with the headlines.
जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं संसद सत्र से जुड़ी खबर से। संसद के विस्तारित बजट सत्र का 3 दिन का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। इस सत्र में खासतौर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अधिनियम पर अमल के लिए सरकार 3 संशोधन विधेयक पेश करेगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए इस अधिनियम को 2023 में पारित किया गया था। परिसीमन विधेयक में लोकसभा में राज्यों के लिए सीटों के आवंटन, प्रत्येक राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या और लोकसभा तथा विधानसभा वाले प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का भी प्रावधान है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन उन्हें भी विधेयक लाए जाने के तरीकों को लेकर आशंकाएं हैं। श्री खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद नई दिल्ली में कहा कि ये विधेयक राजनीति से प्रेरित है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी दल परिसीमन के प्रावधानों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा और राज्यसभा की बहस में इसका विरोध करेंगे।
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ हाई लेवल कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द स्टेट। द डिसीजन वॉज टेकन एट अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर विष्णु देवसाई इन रायपुर यस्टरडे। द मूव इज एम्ड एट सिंप्लीफाइंग लॉज टू प्रमोट रिलीजियस एंड जेंडर इक्वालिटी। Retired Judge Ranjana Prakash Desai will lead the panel, while the Chief Minister has been authorized to nominate its members. Currently, issues such as marriage, divorce, inheritance, adoption, maintenance and family disputes in Chhattisgarh are governed by different personal laws based on religion. The committee will seek suggestions from citizens, organizations and experts and prepare the draft, which will be placed in the State Assembly after due legal process. Article 44 of the Constitution of India directs the state to work towards implementing a uniform civil code for all citizens.
और जनगणना का पहला चरण आज से कई राज्यों में शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह अभियान कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड में शुरू हो रहा है। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान घर घर जाकर आंकड़े जुटाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने एक बताया कि पहली बार अपना विवरण खुद जमा कराने की सुविधा शुरू की गई है, जिस पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके तहत लगभग 12 लाख परिवारों ने सफलतापूर्वक अपनी जानकारी ऑनलाइन दी है। जनगणना के लिए पहली बार डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी आज से स्वगणना सुविधा शुरू की जा रही है। बिहार में स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई तक होगी। राज्य में 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर गणना की जाएगी।
Prime Minister Narendra Modi and Austrian Chancellor Dr. Christian Stocker will hold discussions in New Delhi today on strengthening bilateral cooperation across a wide range of areas. They will also exchange views on regional and global issues of mutual interest, including cooperation in multilateral fora. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar expressed confidence that his discussions with Prime Minister Modi will open new avenues for greater cooperation across various domains. Our correspondent reports that Chancellor Stocker is being accompanied by a high-level delegation comprising Federal Minister of Economy, Energy and Tourism, Dr. Wolfgang Hartmannsdorfer, senior officials and business leaders.
और शगुन संसदीय कार्य मंत्रालय ने कल स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव निकुंज बिहारी ढाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। इस पहल के माध्यम से मंत्रालय ने स्वच्छ भारत के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और पखवाड़े के दौरान किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत कार्य योजना भी साझा की।
Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India has achieved record exports of $860 billion in financial year 2025-26. In a social media post, Mr. Goyal said that the milestone achieved despite global headwinds reflects the country's resilience and also its growing strength in expanding its global trading footprint. He said that the 9 trade agreements concluded under the leadership of Prime Minister Narendra Modi are further accelerating this momentum, opening new markets and unlocking greater opportunities across sectors.
और शगुन खेलों की शुरुआत करते हैं। शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर आर विशाली ने कल साइप्रस में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। 24 वर्षीय विशाली ने फाइनल में रूस की कैटरीना लेगनो को हराया। जीत के साथ ही विशाली ने इस वर्ष होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जगह पक्की कर ली है, जहां उनका मुकाबला चीन की जू वेन जून से होगा। वहीं ओपन वर्ग में उज्बेकिस्तान के जावखुर सिंदारोव ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जीत हासिल की। उन्होंने नीदरलैंड्स के अनीश गिरी को हराया। सिंदारोव का इस साल के अंत में मुकाबला डी गुकेश से होगा।
In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru last night. So put into bat first, Lucknow Super Giants were bowled out for their lowest total of the season, 146, with Mitchell Marsh's 40 being the highest score. Bengaluru pacer Rasik Salamdar bagged 4 wickets, while Bhuvaneshwar Kumar took 3 wickets. In reply, Royal Challengers Bengaluru overhauled the target at the loss of 5 wickets in 15.1 overs, with opener Virat Kohli scoring 49 runs. Lucknow's Prince Yadav picked up 3 wickets, while Avesh Khan took 2 wickets. Bengaluru's Josh Hazlewood was named player of the match. So today, Mumbai Indians will take on Punjab Kings at Wankhede Stadium, Mumbai at 7:30 p.m. Now listeners, as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Sunita Gorbole and Ramchandra Gorbole from Chhattisgarh, who have dedicated their lives to public health and community service. Through their sustained efforts in improving access to healthcare and spreading awareness at the grassroots level, they have made a significant impact. They will be honored with the prestigious Padma Shri.
हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया। 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हमारे कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग।
अगर इनके समझ में हमको बदलाव लाना है तो सबसे पहला है कि महिला ही है कि जो ये बदलाव की वाहक है, तो उसको हमने फिर हाथ में ले लिया। भाई ऐसे महिलाओं के हमने समूह बनाए।
So to listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
और श्रोताओ, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की खबर से शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले राजधानी के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी के विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट लगन का परिणाम है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक को देश की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आशा भरी निगाहों से इस महत्वपूर्ण विधेयक की ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री ने यह बात कल आंध्र प्रदेश में तिरुपति दौरे के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है।
ये बिल जिससे विधानसभा में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका ये निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं।
वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित महिला बाइक यात्रा और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बिल और कानून का वो स्वागत करते हैं।
बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय संसद के पटल पर देखेंगे जब हमारी बहनों को हमारी मातृशक्ति को देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिलेगा। अब बात नहीं होगी, अब अधिकार मिलेगा और उस ऐतिहासिक पल का हम इंतजार कर रहे हैं।
और एक और बहुत ही अच्छी पहल की शुरुआत होगी दिल्ली में। दिल्ली सरकार जल्द ही 20 आधुनिक जेरियाट्रिक एम्बुलेंस शुरू करेगी। सगुन इन एम्बुलेंस को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सक जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है।
नाउ वील हेड टू चेन्नई। In Tamil Nadu, the statewide second-level training for the presiding officers along with polling officials were provided with the facility to cast their votes by postal ballot, and around 3.04 lakh of polling officials have applied for postal voting through Form 12. Appropriate arrangements were made to ensure that they receive their postal ballots at the training centre and to cast their vote at the same venue. The Election Commission of India have developed the pro module in ECI net application for the presiding officers offers to update the 2-hourly turnout report on poll day. For clear understanding of the reporting workflow, system functionalities and timelines, the field testing of the pro module has been conducted on Wednesday for the presiding officers across all assembly constituencies of the state.
और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल के तहत करोड़ों महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुंबई में नारी शक्ति विचार मंच द्वारा आयोजित महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 1 लाख रूपये या उससे अधिक की स्थायी वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने में सक्षम बनाकर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। वहीं मध्य रेलवे ने गर्मियों की भीड़ को देखते हुए मुंबई से वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित कई शहरों के लिए कई ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। ये सेवाएं इस महीने से जुलाई तक मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से संचालित की जाएंगी। कुछ ट्रेनें सप्ताह में 1 बार और कुछ 2 बार चलेंगी।
नाउ वी टर्न आवर अटेंशन टू बेंगलुरु। The Karnataka government will unveil the second edition of the Global Innovation Alliance or GIA 2.0 at the Bridge to Bengaluru 2026 Diplomatic Dialogue in New Delhi tomorrow. This is aimed at strengthening global tech collaborations and market access as well. The initiative is expected to attract investments of 5,500 crore rupees, create around 7,200 jobs and bring 6,350 crore rupees into data center projects. We have another update from Bengaluru listeners for you. The Central Railway will run 3 trips of summer special trains between Saharsa and Yeshwanpur to clear extra passenger rush. Train number 0551 Saharsa Yeshwanpur will depart every Thursday at 8:25 p.m. from 16th, which is today, to 30th of April, arriving Saturday at 10:30 p.m. while train number 0552 Yeshwanpur Saharsa will depart every Sunday at 7 a.m. from 19th of April to 3rd of May, reaching Tuesday at 11 a.m. The train will halt at major stations on route, which include Visakhapatnam, Bhubaneswar, Kharagpur, Vijayawada, and will have 22 coaches comprising general, sleeper, AC 3-tier economy and luggage cum brake vans.
और शगुन पश्चिम बंगाल में भी इस समय चुनावी माहौल का दौर चल रहा है। वहां पर पहले चरण के लिए केंद्रीय बलों की लगभग 2,500 कंपनियों के साथ कुल 40,928 राज्य पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस की सबसे अधिक तैनाती मुर्शिदाबाद जिले में होगी, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए 2 पुलिस जिलों मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में विभाजित किया गया है।
Focusing now on Hyderabad for it now, the Telangana government has launched a significant statewide initiative to bring artificial intelligence literacy to nearly 2 million students in government schools in a strategic partnership with Amazon Future Engineer and the PyJam Foundation. The school education department today distributed 2,000 laptops to Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and other state-run institutions to bridge the digital divide. So students from class 5 to 9 will engage with a structured digital learning curriculum developed by SCERT Telangana. This curriculum moves beyond basic computer literacy to focus on design principles, digital citizenship. During the launch, education officials emphasized that this model ensures students become creators rather than just consumers of technology. As India prepares for a national AI rollout in 2027, Telangana's integrated approach serves as a scalable blueprint for equitable and future-ready education.
और श्रोताओं, अब हम महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं. सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, तो शगुन गर्मी की शुरुआत हो गई है क्योंकि कल ऑफिस से घर जाते वक्त बहुत गर्मी का सामना करना पड़ा. और अपने श्रोताओं को भी हम यही कहेंगे, खास ख्याल रखें अपना इस गर्मी में. और हम बता दें आपको कि न्यूनतम तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. और मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इसके अलावा कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
सो फरत, इफ आई टॉक अबाउट चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज. बेंगलुरु, it is again expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Hyderabad, again, Farhat, partly cloudy sky but with haze. The minimum temperature will be around 27 degrees and maximum will be around 41 degrees Celsius there.
जी, और अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे जहां हम इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे. लेकिन उससे पहले शगुन ने अपने श्रोताओं को हम ये सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं.
मेरे यार पहचान है, घर याद है.
गुलजार साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, आवाज भी एक आईना है जो सच बोल देती है, झूठ बोलो तो लहजा खुद ही डोल देती
है. हाउ ट्रू, आवाज ही पहचान होती है, राइट. सो टुडे एक्चुअली वर्ल्ड वॉइस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एंड दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव व्हिच इज डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वॉइस इन डेली लाइफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन एंड वी आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद आवर लिसनर्स इन वॉइस मीडियम. सो द थीम फॉर दिस ईयर फरत, इट इज केयरिंग फॉर आवर वॉइसेस.
Your voice, your identity, speak up for vocal health. यानी आवाज तुम्हारी पहचान है, इसे सेहतमंद रखो और जरूरत पड़े तो बोलो भी.
And it promotes vocal health awareness this day especially and encourages early diagnosis of voice disorders and as well as a preventive care for vocal professionals and the general public as well.
जी बिल्कुल शगुन, और वैसे भी कहा गया है कि जो आपकी आवाज है वो एक माध्यम होती है किसी को भी कुछ भी अपनी बात को बताने का,
टू कम्युनिकेट.
जी बिल्कुल, क्योंकि खामोश रह के भी तूफान उठा देती है, कभी कभी एक आवाज इंकलाब ला देती है.
हाउ ग्रेट, अमेजिंग.
जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आज सभी लोग जो है वर्ल्ड वॉइस डे मनाएंगे. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं.
सो वील टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम. इन द ईयर 1853 India inaugurated its first passenger railway covering a 34-kilometer stretch between Boribandar, Mumbai and Thane.
जी 1917 में आज के दिन पेट्रोगार्ड में रूसी सैनिकों का विद्रोह हुआ. क्रांति के समय रूस एक निरंकुश शासन था जिसमें जार निकोलस द्वितीय का अपने लोगों पर पूर्ण अधिकार था, लेकिन यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं अत्यंत पिछड़ी हुई थी.
In 1912, Harriet Quimby, the first woman to earn a pilot's license in the United States, became the first woman to fly across the English Channel.
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी ने आज ही के दिन उपवास की घोषणा की थी. ये नरसंहार अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया था और इसके विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी.
Yes, he led a day of prayer and fasting to protest the जलियांवाला बाग massacre. In 1972, Apollo 16, the fifth of six U.S. lunar landing missions, was successfully launched from Florida.
1980 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया.
In 2003, Michael Jordan played his last game in the National Basketball Association, well commonly known as NBA.
और सन 2008 में आज के दिन लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ.
In 2018, Kendrick Lamar became the first rapper to win the Pulitzer Prize.
तो ये तो थी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, और अब हम अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. जैसा कि शगुन हमने शुरुआत में बताया था कि आज हम बात करेंगे चार्ली चैपलिन की.
Yes, सबसे बिगिनिंग विद दैट.
जी, उनका कहना था, मुझे बारिश में भीगना पसंद है क्योंकि बारिश में मेरे आंसू दिखाई नहीं देते. ये डायलॉग उन्होंने कई बार जो है वो बोला है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ही खुशमिजाज लगते थे लेकिन उनकी जो असल जिंदगी थी वो बहुत ही गंभीरता से गुजरी.
And still he made people laugh, right?
जी.
So yes, we are telling you about Charles Spencer Chaplin. Actually, he rose to fame in the era of silent films, as we know. And in addition to actually becoming a worldwide icon as the Tramp, he is considered as one of the most influential figures in Hollywood and everywhere globally as well. And his career spanned more than 75 years.
बिल्कुल, और उन्होंने जिंदगी भर लोगों को खुशियां दी, लेकिन दुनिया को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि अंदर वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे। इंग्लैंड के लंदन शहर में 16 अप्रैल 1889 के दिन चार्ली का जन्म हुआ, और उनकी माँ का नाम था हार्ना चैपलिन और पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर था। और उनके माता पिता एक म्यूजिक हॉल में काम करते थे। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है वो हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद भी अपनी लोकप्रियता जो है वो उन्होंने मनवाई।
सो अगेंस्ट ऑल ओवर Well, we still remember him 75 years career span.
जी.
Today, listeners, we are also remembering Nandalal Bose. Well, one of the pioneers of modern Indian art and a key figure of contextual modernism. So, he actually, today many critics consider his paintings among India's most important modern paintings. In 1976, the Archaeological Survey of India Department of Culture declared his works among the 9 artists whose work, not being antiquities, were to be henceforth considered to be art treasures, having regard to their artistic and aesthetic value. So, actually, he was widely revered for his contributions to the Bengal School of Art and his role in designing the original manuscript of the Constitution of India. He was awarded the Padma Vibhushan in 1953.
जी बिल्कुल शगुन, और इनके प्रसिद्ध चित्रों में डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग शामिल है। नंदलाल बोस ने चित्रकारों और कला अध्यापन के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। तो इनके बारे में और जो जानना चाहते हैं, इनकी चीजों को, चित्रकारी को समझना चाहते हैं, तो इन किताबों का वो रुख कर सकते हैं।
दे कैन सर्च हिज पेंटिंग्स एज वेल।
जी, और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका जिनका आज जन्मदिन है, एस सौम्या को। संजय सुब्रमण्यम के बाद सबसे कम उम्र की संगीतकार हैं ये, जिन्हें प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वे प्रसिद्ध डॉक्टर एस रामनाथन और डी मुक्ता की छात्रा रहीं। एस सौम्या ने समान रूप से अपनी अकादमिक खोज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मद्रास विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
Today, listeners, we're also remembering Rosalind Franklin. So her work was central to the understanding of the molecular structures of DNA, RNA, coal, graphite as well. While her works on coal and viruses were appreciated in her lifetime, her contributions to the discovery of the structure of DNA, they were largely unrecognized during her life. And then she has been referred by various people like the Dark Lady of DNA as well. So she actually developed that with some of the other people which she used to work with at that time. So that's why she got the recognition for that DNA and RNA as well, the structure of that.
और आज तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कुंदुकूरी वीरेशलिंगम की भी जयंती है, जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्मा के नाम से ख्याति मिली। कुंदुकूरी वीरेशलिंगम का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में। उन्होंने जाति विरोध आंदोलन का सूत्रपात किया। इन्होंने विधवा आश्रमों की स्थापना की। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1874 में राजमंड्री के समीप धलवेश्रम में और 1884 में इन्नीसपेटा में बालिकाओं के लिए पाठशालाओं की भी स्थापना की। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के प्रवर्तक वीरेशलिंगम ने प्रथम उपन्यासकार, प्रथम नाटककार और आधुनिक पत्रकारिता के प्रवर्तक के रूप में ख्याति अर्जित की।
Well, yes, he was one of the early social reformers who encouraged the education of women and he was also considered as the father of the Telugu Renaissance movement. Listeners, today we are also remembering the musician, conductor, composer, arranger, pianist, well, Henry Mancini. So he is often cited as one of the greatest composers in the history of film. He won 4 Academy Awards, Golden Globe, 20 Grammy Awards, and a posthumous Grammy Lifetime Achievement Award. this is a very famous tune as you were listening to it, listeners. So he also composed Moon River, the title song from Days of Wine and Roses. And each of those tracks won the Grammy for both Record and Song of the Year as well. So Mancini enjoyed a long collaboration in composing film scores, one of which you are listening to right now. Another one, Pink Panther theme, Moon River, so many of them. And that won the inaugural Grammy Award for the Album of the Year 1958.
और श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान सरिता मोर का। इन्होंने 2017 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 58 किलो भार वर्ग में रजत पदक और 59 किलो भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 2021 में इन्होंने रोम इटली में आयोजित माटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता।
टुडे वी विल आल्सो टेल यू अबाउट शहीद लतीफ, द डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर, maker of the films like Ziddi and which launched Devanand's career. And there is another film which even I got to know about today, Arzu, the stars Dilip Kumar and Kamini Kaushal. This was a 1950 film. I was telling you about Shahid Latif, the screenwriter.
और अब हम बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्री लारा दत्ता की, जिनका आज जन्मदिन है। इन्हें मिस यूनिवर्स 2000 का ताज पहनाया गया, जिसने मिस यूनिवर्स के इतिहास में इस ताज को पहनने वाली न केवल सबसे खूबसूरत बल्कि सबसे बुद्धिमान युवा महिला के रूप में इतिहास रचा।
वेल राइट, द विनर ऑफ मिस इंटरकॉन्टिनेंटल 1997 एंड एज यू वर टेलिंग मिस यूनिवर्स एज वेल, well she has worked in Hindi films, well predominantly there. So she made her acting debut, let me tell you about the film Andaz. And this won her the Filmfare Award for Best Female Debut. And she went on to star in several films, which include Bhagam Bhag, comedy movies I'm talking about, Houseful, Partner, so many movies. And following a hiatus, she appeared in British drama miniseries as well. This is Beecham House in 2019. And there she, and another film as well, Bellbottom. She has since taken so many roles in streaming series like 100 and many more.
जी बिल्कुल, बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते। और सन 2000 में साइप्रस में मिस यूनिवर्स का भी ताज इन्हें पहनाया गया। और फिल्म अंदाज में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में नजर आए इनके साथ, और काफी लोकप्रिय रही ये फिल्म। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म से ये प्यारा सकी।
Well, yes, the actress, first we were telling our listeners about that. She first has won the pageants, beauty pageants, and then she has been working in films. And she established herself as a prominent leading actress in the 2000s. And the movie that you were talking about, Farhat, Andaz in 2003 with, like you were telling about that to our listeners, she won her Filmfare Award for Best Female Debut. This was the first one that she won.
जी बिल्कुल शगुन, और अगर इनके परिवार की बात करें तो लारा की दो बहनें हैं, जिनमें से एक भारतीय वायुसेना में काम करती हैं।
How great.
जी, और वो है नितिन सहानी की चचेरी बहन भी हैं। और 1981 में दत्ता परिवार बैंगलोर आया, उसके बाद लारा दत्ता ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और उसके बाद वो फिल्मों में आई।
Well, yes, she has acted in series such as Kaun Banegi Shikharvati and Ranneeti Balakot and beyond.
इसी खूबसूरत से गीत के साथ अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आप दोबारा इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.newsonair.gov.in।
एंड मी एंड फरहत, वी बोथ विश यू अ सुपर्ब डे अहेड एंड अ वंडरफुल मॉर्निंग एज वेल एंड द होल डे। एंड विद दैट वी विल एंड द प्रोग्राम हियर।
नमस्कार।
तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है।